एक छोटा सा रात्रि क्लास है 23/11/68। बाप और दादा से बच्चे अनुभव ले रहे हैं, अभी सिर्फ दादा से तो अनुभव नहीं मिल सकता, क्योंकि दादा कहते हैं भाई को, बड़ा भाई, छोटा भाई भी होता है और बाप तो बाप ही है, तो जरूर बाप ने अनुभव सुनाया होगा। यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप दादा से विश्व का मालिक बनने लिए, तो तुमको कितना जबरदस्त नशा है, इस नशे को तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के दुखों से पार तुम हो जाते हो। बाकी अभी थोड़ा समय है, फिर तो ये पुरानी दुनिया ही नहीं रहेगी, पुराने संबंध भी नहीं रहेंगे, फिर होंगे नए संबंध, और नए संबंध भी पूरे हो करके फिर पुराने शुरू होंगे। अभी तो दुख का संबंध है, वास्तव में दुख का बंधन कहा जाता है, उसे संबंध कहेंगे भी नहीं, इनको कहा जाता है दुख धाम। अभी बच्चों को वर्ल्ड की ज्योग्राफी का ज्ञान मिला है और ये भी निश्चय हुआ है कि आत्मा ही पार्ट बजाती है, ये भी समझ आ गई। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो सब प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। आत्मा शरीर के द्वारा ही दुख सुख भोगती है, अगर शरीर से डिटैच हो जाए तो न सुख भोगेगी न दुख भोगेगी। सत्युग में तुम्हारे सुख शुरू हो जाएंगे, अभी बेहद के बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिल रहा है, ये बात समझते भी हैं, फिर भी खुशी क्यों नहीं होती है? खुशी न होने का भी कारण है बार बार देवान में आ जाना, माया की प्रवेशता हो जाती है, तो तुम्हारी है ही माया के साथ युद्ध। बाकी तो पांडवों ने कोई युद्ध नहीं किया, युद्ध तो कौरव करते हैं, जैसे चीन से भी युद्ध हो गई थी ना, कोई समय ऐसा भी हुआ जो हिंदू हिंदुओं से लड़ पड़े, भारतवासी भारतवासियों से लड़ते थे। एक दो के दुश्मन हो पड़ते थे। तो तुम जानते हो कि घर में जब फूट होती है तो दूसरों को भी चांस मिल जाता है। अभी तुमको तो वर्षा मिलता है, इसमें युद्ध की कोई बात नहीं। तुम गुल गुल बन जाते हो तो बाप से वर्षा लेते हो, तुम्हारी तो कोई से भी दुश्मनी नहीं है। और ये भी ड्रामा है, इस ड्रामा में तुम खेल खेलते हो, उस खेल में माया का भी राज आता है। सारे रचयिता और रचना का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में, तो बाप से वर्षा भी तुम ही लेते हो। पहले पहले याद से पवित्र बनते हो और दैवी गुण धारण करने से ऊंचे देवता बनते हो। अभी तो तुमको जाना है ना, तो इस दुनिया को बुलाना पड़ता है। ऐसे समझो जैसे कि ये दुनिया है ही नहीं। समझ में तो आता है ना, इन आंखों से हम जो कुछ देखते हैं वो सब भस्म हो जाएगा, बाकी हम आत्माएं रहेंगी जो चली जाएंगी अपने घर। क्योंकि अभ्यास करते करते हम आत्माएं अशरीरी बन जाती हैं। आप मुए मर गई दुनिया, तो सच सच पुरानी दुनिया खत्म होती है, जैसे कि मर गए। इसलिए बाप कहते हैं तुम जो कुछ भी देखते हो ये सभी खत्म हो जाना है, सिर्फ तुम अपन को आत्मा समझो बस। फिर और संबंधों की स्मृति में नहीं रहना है, पुराना सब खलास हो जाएगा। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करने में बहुत मौज में आते रहेंगे, फिर तुम हल्के हो जाएंगे। ये संगम युग है ही मौजों का युग। जानते हो आत्मा कितनी छोटी है? आत्मा जैसी हल्की चीज तो और कोई होती ही नहीं। बच्चों ने अपन को और अपने बाप को पहचाना है। कभी समझ मिली है? हम सतयुग त्रेता में थे, फिर द्वापर कलयुग में भक्ति करते रहे, अभी संगम पर है। हम जा रहे हैं अपने घर, जिनको निश्चय हो जाता है वो तो फील करेंगे अब हम प्रिंस बनने वाले हैं। सो भी नई दुनिया में जाकर के प्रिंस बनेंगे। तुम ये प्रिंस बनने आए हो ना, तो जिनको ये निश्चय है उनको ये बात दूसरों को भी समझानी है। तुम सच सच कहते हो कि हम प्रिंस बनेंगे, हमको ये ज्ञान है, वो वो भक्ति मार्ग में बहस का दृष्टांत देते हैं। बोले मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ। अब ये तो एक दृष्टांत की बात हुई, तुम्हारी तो है निश्चय की बात। बच्चों को निश्चय हो गया है, अभी हम नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनने वाले हैं, परंतु अंदर में बहुत सफाई चाहिए। कोई भी प्रकार की दुविधा अंदर में नहीं होनी चाहिए। दुविधा होगी तो ग्लानी भी करते रहेंगे, एक दो के अवगुण देखते रहेंगे, कोई के भी अवगुणों का गाना नहीं गाना है। अवगुण की बात एक किनारे रख दो, जो कचरा होता है उसको दबाया जाता है, उछालने से वातावरण में बदबू फैलेगी, जिसका असर अपने को भी हो जाएगा। तो कोई की भी ग्लानी करना ठीक नहीं है। बाप तो आए ही है शिक्षा देने, तो कोशिश करके अक का फूल नहीं बनना चाहिए। क्योंकि सर्विस का शो नहीं करेंगे तो बाप के दिल पर कैसे चढ़ेंगे। जो स्कूल में पढ़ते नहीं है वो तो समझते हैं कि हम फेल हो जावेंगे, या तो फिर थोड़े मार्क्स से पास होंगे। क्षत्रिय घराने वालों को कहेंगे फेल, तो सबसे जास्ती खुशी तुम बच्चों को है कि हम गॉडफादरली स्टूडेंट्स हैं। जब गॉडफादर पढ़ाते हैं तो वो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, स्मृति में रहना चाहिए। परंतु माया फिर भी हम बच्चों को भुलाई देती है। जैसे बाप टीचर सदगुरु का प्यार तुम बच्चे लेते हो, तो उस प्यार को ही देखना है, इन आंखों से ना अपने शरीर को देखना है और न दूसरे शरीरधारियों को देखना है। इस समय ही तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम बच्चों को मिला है। बाकी उन भक्तों को तो कहेंगे भक्ति का नेत्र, अज्ञान का नेत्र। फिर बच्चों को कहते हैं बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, दैवी गुण धारण करो। हमारी आत्मा बुद्धि से याद की यात्रा कर रही है, याद करते करते ही सारे पाप कट जावेंगे और हम सत्व प्रधान बन जावेंगे। बाप है ही सत्य, कहते भी हैं सत्य चित्त आनंद, तो सत्य को याद करेंगे तो सत्य बन जाएंगे। एक बाप ही है जो सदा निष्पाप है, सदा शिव है, तो जैसे कोई याद करेंगे तो वैसे निष्पाप हम भी बन जाएंगे। अच्छा मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। आज की वाणी है 24/11/68 का प्रातः क्लास। शिव भगवान वाच कहने से कोई ये भी नहीं समझे कि कोई मनुष्य शिव होता है। मनुष्य तो मन वाले को कहते हैं, भगवान तो अमन है और देवताएं भी अमन हैं। बड़े चैन से रहते हैं। मनुष्य का मन चंचल होता है, भगवान को चंचल थोड़े ही कहेंगे। तो सोचना चाहिए कि भगवान वाच कहने वाला कौन है। मनुष्य है या कोई देवता है या स्वयं भगवान है, ये भी कोई समझते नहीं है। ये बात तो तुम बच्चे ही समझ सकते हो और वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, नहीं तो बीच बीच में माया वायलोरा डालती है, अनिश्चय होने लग जाता है। ये पाठशाला है, इस पाठशाला में बच्चों को पाठ पढ़ना है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो पढ़ करके फिर पढ़ाते भी है। ये पढ़ाई ऐसी है जो दिन प्रतिदिन बड़ी सूक्ष्म गुह्य ज्ञान वाली होती जाती है। गीता में लिखा भी है, गुह्यात् गुह्यतरम् ज्ञानम्। अभी तुम जानते हो गुह्य ज्ञान देने वाला बीज रूप बाप है और वो चैतन्य भी है ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। माना बीज बाप को कहा जाता है, बाप बीज बोने वाला है ना। वो छोटे छोटे झाड़ होते हैं, जो छोटे छोटे झाड़ होते हैं उनका बीज हृदय की रचना करता है और बेहद मनुष्य सृष्टि का बीज एक ही बाप है और वो बीज ऊपर में है, अर्थात वृक्ष की अंतिम स्टेज में भी ऊंची स्टेज में है। इसलिए ऊंची स्टेज में होने के कारण उनकी महिमा गाई जाती है।
वो ही ज्ञान का सागर है।
अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, कि वो बीज ऊपर में है, नहीं, जब वृक्ष के बीज ऊपर में होते हैं, फल पक जाता है, तो बीज वृक्ष से डिटैच हो जाता है, अभी तो डिटैच नहीं कहेंगे, अभी तो वो बीज भी यहाँ है, अभी तो तुम्हारी बुद्धि भी ऊपर नहीं जाती है, तुम जानते हो बाबा जो सारा कल्प ऊपर में रहते हैं, वो सिर्फ एक ही बार पिछाड़ी में आते हैं, और पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, वो तो आती हैं दुख रूपी झाड़ में, और बाप तो सुख दुख से न्यारा है, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप दुख की दुनिया में आए हैं। अरे उनको तो दुख की लेस भी नहीं आ सकती, जैसे कोई बीमार बीमारी होती है, मान लो प्लेग होती है, फैलने वाली बीमारी है, तो मनुष्य तो डर करके भाग जाते हैं, परंतु जो सेवाधारी अच्छे डॉक्टर होते हैं वो तो नहीं भागते हैं, डॉक्टर तो दवाई करते हैं। तो इस समय इस सारी दुनिया में बीमारी है, इस बीमारी को निकालने वाला कोई मनुष्य मात्र नहीं है, इस विकारों की बीमारी को निकालने के लिए अविनाशी सर्जन को आना पड़ता है, और वो इस बीमारी की दुनिया में आने से डरते नहीं है, वो तो आते ही हैं सभी की दवाई करने के लिए। वो आते ही हैं इस विषय सागर में, जहां के विषय विकारों से वो डरते नहीं है, और उनको कोई बीमारी लगती भी नहीं है, बीमारी उनको लगती है जो शरीरधारी होते हैं, वो तो है ही निराकार, तो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी कहा जाता है, उनको कोई भी लेपछेप नहीं लगता, बाप तो और हंसी से कहते हैं तुमने मेरी बहुत ग्लानी की है, फिर कृष्ण की भी ग्लानी की है, राम की भी ग्लानी की है, बाकी ब्रह्मा की इतनी ग्लानी नहीं है, ऐसे तो उनकी भी होनी चाहिए, तो जब से बाप ने इनमें प्रवेश किया है तो देखो इनको भी कितनी गालियां मिलती हैं, इनसे कितनी घृणा करते हैं अखबारों द्वारा। पिछाड़ी में इनको भी गाली दिलाई, अंतिम जन्म है ना, मुझे तो आधा कल्प गाली दी है, अभी मैंने इनमें प्रवेश किया है, तो मैं कहता हूं खाओ तुम भी गाली, खूब गालियां मिलती रहती हैं प्रैक्टिकल में। औरों के लिए शास्त्रों ने लिख दिया है, शास्त्रों में लिखी हुई बात को प्रैक्टिकल थोड़े ही कहेंगे, और इनको तो प्रैक्टिकल में सन्मुख बहुत गालियां देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे तो कब तुमको कोई गाली नहीं देते थे, क्योंकि तुम्हारी तो दुनिया में महिमा होती थी, परंतु अभी तो मैंने प्रवेश किया है, परंतु मैं तो हूं निराकार, मुझे तो गाली दे नहीं सकते और मुझे गाली लग भी नहीं सकती, तो तुमको देते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, जो इनको गालियां देते हैं, नहीं तो ये बहुत पापात्मा तमो प्रधान भी तो बने हैं ना। गाली देने वाले भी पापात्मा तमो प्रधान बनते हैं, ये साधु सन्यासी भी न जानने के कारण गालियां देते हैं, कहते हैं इनमें भगवान कैसे आ सकता, भगवान तो श्री कृष्ण के रूप में आकर के ज्ञान सुनाता है। अभी बाप कहते हैं कृष्ण तो भगवान हो ही नहीं सकता, वो समझते हैं भगवान कृष्ण में आते हैं। अभी कृष्ण तो ज्ञान का सागर है नहीं, ये बात कभी भी कोई की बुद्धि में नहीं आ सकती, क्योंकि कृष्ण तो 16 करोड़ कला संपूर्ण बनता है, जो 16 कला संपूर्ण बनता है वो आत्मा फिर कलाहीन भी बनती है। तब कहा जाता है भगवान ने नर को नारायण 16 कला संपूर्ण बनाया, कृष्ण अगर ज्ञान का सागर होता तो नर को नारायण भी बनाता ना, नारायण के द्वारा सारी प्रजा में यह ज्ञान होता, परंतु वह नारायण तो ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर पद पाता है, वहां सत्युग में ये ज्ञान तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, ये ज्ञान तो है ही कलयुग के अंत और सत्युग के आज की पढ़ाई का ज्ञान, ये पढ़ाई न सत्युग में होती है न कलयुग में मिलती है। जो सयाने समझू हैं वो इन बातों को समझते हैं। बरोबर अभी कलयुग का अंत है, ये बात सुन करके कई अज्ञानी मनुष्य तो तुम्हारे ऊपर हंसी उड़ाते हैं। ये भी बच्चों को समझाया है, अज्ञानी आत्मा ही बनती है, आत्मा में ही ज्ञान है, तो उनको ज्ञानी कहा जाता है। बाप तो है ही परमात्मा, उनकी पूजा भी करते हैं, तो कहा जाता है शिव परमात्मा ही नमः। अभी तुम जानते हो वो परमात्मा है, परम अर्थात सभी आत्माओं का बाप, परे से परे स्टेज में रहने वाला, उनको सभी याद करते हैं। कहते हैं बाबा रहम करो, हमको लिबरेट करो, हमारी इस मेहनत का हमको फल दो, तो तुमको बाप लिबरेट भी कहते हैं और भक्ति का फल भी देते हैं। ये भी जानते हो कि भक्ति का फल है ही ज्ञान, जिस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। सदगति पहले पहले तुम्हारी आत्मा की होती है, फिर पांच तत्वों की होती है, पांच तत्वों से ही शरीर बनता है। ऐसा क्यों है? पहले पहले आत्मा की सदगति क्यों, शरीर की क्यों नहीं?
आत्मा तो चैतन्य, आत्मा चैतन्य,
शरीर तो पांच तत्वों वाला जड़ है। जड़ ज्ञान नहीं उठा सकता, आत्मा तो चैतन्य है, ज्ञान उठा सकती है। इसलिए आत्मा की पहले सदगति होती है, आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। मन बुद्धि में सत संकल्प ही चलेंगे, कोई भी प्रकार का दुष्ट संकल्प नहीं आ सकता, उसको कहेंगे सदगति। इन बातों को विस्तार से समझने की भी दरकार नहीं रहती, तुम इस ड्रामा के चक्र को अच्छी रीति जानते हो। सतयुग में तो तुम हो ही सतो प्रधान, उस युग का नाम ही है सत्ययुग। फिर त्रेता में थोड़ी थोड़ी कला कम हो जाती है, सतयुग में आत्मा में रोशनी जागती होती है, अर्थात वहां आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान है। संपूर्ण सतो प्रधान है तो इतना वहां सुख भी है। लोग कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे कब नहीं कहेंगे कि त्रेता में पधारा, राम राज्य में गया, नहीं गायन करते हैं स्वर्ग पधारा। सभी को स्वर्ग याद रहता है, अर्थ ही है स्वर्ग। ग माने गया, स्व माने स्वस्थिति में गया, परंतु इस दुनिया में तो कोई स्वर्ग जाता नहीं, इस दुनिया में स्वर्ग है ही नहीं। अभी तो कलयुग है सारी दुनिया में, तो स्वर्ग कैसे पधारेंगे? वास्तव में स्वयं स्थिति में जाएंगे तो स्वर्ग का अनुभव करेंगे, तो नाम पड़ जाता है स्वर्ग। वो लोग भी कहते हैं हेवन, विन माने जीत पाना। तो जिन्होंने जीत पाई है विकारों पर उनको हेवन नसीब होता है। तुमको तो त्रेता में जाने की भी दिल नहीं होती है, क्यों? तो वो तो दो कला पुराना हो जाता है। बाबा भी बेहद का घर स्थापन कर रहे हैं, वो है ही सत्ययुग। 24/11/68 की वाणी का दूसरा पेज, वो करण करावन हार है, करके भी दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा और फिर बच्चों से कराते भी हैं। तो बाबा अभी बेहद का घर स्थापन कराए रहे हैं, तो कहेंगे स्वर्ग की स्थापना कराए रहे हैं। हमेशा शुभ बात बोलनी चाहिए, इसलिए सदैव स्वर्ग का ही नाम लेते हैं। त्रेता का कब कोई नाम नहीं लेंगे? जैसे शिव को शंकर से मिलाई दिया है, वैसे सतयुग त्रेता को भी मिला करके स्वर्ग कह दिया है। अभी बाप बैठ समझाते हैं और ये सभी पसंद भी करते हैं कि हम नई दुनिया नए घर में जावेंगे। त्रेता को भी दो कला पुराना घर कहेंगे, उनको नया घर नहीं कहेंगे। परंतु पुराने घर में जाते तो है ना, क्यों जाते हैं वो भी तुम जानते हो। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं तो फिर त्रेता में देरी से आते हैं। बाकी वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो नई दुनिया को कहेंगे, त्रेता को थोड़े ही कहेंगे। तो इसलिए बाप कहते हैं उस नई दुनिया सत्युग में जाने के लिए, वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जाने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, क्योंकि देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगती है। बल ज्ञान बहुत अच्छा है, परंतु देह अभिमान तो अनेक जन्मों का है ना। कोई कोई बच्चे हैं जो मुख से कहते हैं बाबा आप याद नहीं पढ़ते हो, तो बाबा पूछते हैं बाबा याद नहीं पड़ता है तो फिर तुम किसको याद करते हो? मन बुद्धि का तो काम है याद करना, कोई न कोई तो याद जरूर आता है। तो बाप समझाते हैं परमात्मा बाप तो एक ही है, बाकी तो सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। भाई को भाई से सुख का वर्षा नहीं मिलेगा, एक बाप से ही मिलेगा, और वो परमात्मा बाप एक ही है। बाकी तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, जैसे जलाने के लिए ढेर कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो सारे कचरे को इकट्ठा करके फिर क्या करते हैं, जला देते हैं। तो दुनिया में ढेर का ढेर कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा है। बाप आकर के उस कचरे में से कितनी आत्माओं को उठा लेते हैं, है? 9 लाख आत्माओं को उठा लेते हैं। 9 लाख सितारे हैं, ये धरती के सितारे हैं, जो आसमान के सितारों की तरह कयामत के समय में इस कचरे की दुनिया में चमकेंगे, दूर से ही देखने में आवेंगे। बाकी तो जो भी 500-700 करोड़ का कचरा है, सब में आग लगेगी। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। नहीं तो देह अभिमान बहुत इकट्ठा हुआ पड़ा है, अगर देह भान खलास न हुआ तो नतीजा क्या होगा, क्या नतीजा होगा, कचरे में भस्म कर दिया जाएगा, फिर ऊंच पद मिल न सके। कोई को तो तीर पूरा लग जाता है, कोई को लगेगा ही नहीं। तो वेद के कचरे का ढेर दुनिया में बहुत है, इस कचरे को खत्म करने के लिए इस मनुष्य सृष्टि पर बाप ने आकर के यज्ञ रचा है, और ये यज्ञ कल्प कल्प भारत में ही रचा जाता है। क्यों भारत में ही क्यों रचा जाता है, क्योंकि बाकी दुनिया के जो लोग हैं, बाकी धर्मखंड के जो वासी हैं जन्म जन्मांतर के, भारतात रोशनी, ज्ञान की रोशनी, याद की रोशनी, उसमें रत नहीं रहते हैं। रत रहना माने लगे रहना, ये तो भारत ही है, जहां के वासी ज्ञान की बातों में लगे रहते हैं, ज्ञान का लेन देन करते हैं। ये ईश्वरीय ज्ञानी है जिससे सारी दुनिया का नंबरवार कल्याण होता है। इस गीता ज्ञान यज्ञ का किसी को भी पता नहीं है, नहीं तो कहां ये ज्ञान यज्ञ रचा हुआ था, उसकी निशानी भी जरूर चाहिए। जैसे ये तुमको याद है कि फलाने समय लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फलाने समय राम का राज्य था, फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ, तो ये सब निशानियां है ना। तो ये ज्ञान यज्ञ कहाँ रचा गया? इसकी भी निशानी जरूर चाहिए। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, दीपमाला पर बहुत मूर्ति बनाकर फिर घर में ले आते हैं, ला करके पूजा करते हैं, नवरात्रियों पर कितनी पूजा करते हैं देवियों की, आसाम की तरफ देवियों की देवताओं की मूर्तियां बनाने वाले खास कारीगर होते हैं, तो देखो मनुष्यों की कितनी भावना बैठ जाती है उन मूर्तियों के ऊपर। जब डुबोने के लिए ले जाते हैं तो कितना रोते हैं। अभी तुम तो हंसी करेंगे, ये गुड़ियों का खेल बनाकर पूजा करते हैं, दक्षिणा देते हैं, फिर डुबो देते हैं। जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो बहुत कुछ देते हैं बनाने वाले ब्राह्मणों को, परंतु वो बड़े आदमी ऑक्यूपेशन को तो जानते ही नहीं है, नहीं जानते हैं तो गुरुओं की पूजा कहेंगे ना। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। क्यों बनाते हैं, क्यों पूजा करते हैं, क्यों इतनी दक्षिणा देते हैं, फिर क्यों जाकर के डुबो देते हैं, कुछ भी नहीं जानते। तब बाप कहते हैं तुमको तो हमने इतना धनवान बनाया, तुम स्वर्ग के मालिक बन गए, फिर ये सारा धन तुमने कहाँ किया, कहाँ गंवाया? अभी भी तुम समझते हो कि बरोबर इस दुनिया में स्वर्ग था, अभी बाप वो स्वर्ग फिर से स्थापन कर रहे हैं। तुम जानते हो अभी बाप ने तीरी पर बहस चलाया है, तीरी हथेली को कहा जाता है, कि तुम्हारे बुद्धि रूपी हाथ में स्वर्ग का सारा नक्शा आ गया। तो तुम जानते हो कि हमारा अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर, बाप ने हमको बहुत बड़ा कारीगर बनाया है, तुम्हारे जैसा कारीगर कोई हो ही नहीं सकता। जो स्वर्ग की रचना कर दिखावे, बाप डायरेक्शन देते हैं अभी स्वर्ग की स्थापना करो, तो सारी दुनिया पवित्र बन जाएगी। ये सारी धरती पवित्र बननी है ना, पहले तो खुद पवित्र बनो। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। फिर दुनिया भी सत्व प्रधान बनेगी तुम्हारे वाइब्रेशन से। सर्वशक्तिवान बाप के तुम बच्चे हो तो बाप तुमको कितनी ताकत देते हैं? कौन सी ताकत देते हैं? याद की यात्रा से तुम्हारा वाइब्रेशन कितना सुधर जाता है। कीट, पशु, पक्षी, पतंगे, प्रकृति के पांच तत्व भी सत्व प्रधान बनने लग पड़ते हैं। सारी धरती पवित्र बन जाएगी। मुझे याद करते करते तुम पूरे सत्व प्रधान बन जाएंगे। तो फिर तुमको सत्व प्रधान सस्ती भी चाहिए? ये तमो प्रधान दुनिया की विनाश। वो विनाश भी जरूरी है। स्थापना और विनाश ये जरूर होना है। कल्प कल्प ऐसे होता है। सारी सृष्टि गोल्डन एज कहलाई जाती है। अभी तो आयरन एज है। तुम्हारे लिए सत्व प्रधान सृष्टि जरूर चाहिए। और तुम तो सारे पांच तत्वों को भी सत्व प्रधान बनाते हो। अपनी याद की पावर पर, ये याद की पावर तुम बाप से लेते हो। देही अभिमानी बनने से तुम सारे भारत की इतनी सेवा करते हो। कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हम इतने देही अभिमानी बन नहीं सकते हैं। तो समझ लेना चाहिए तुम उतने ऊंच पद पा ही नहीं सकेंगे। और महारथियों से ही माया जोर से लड़ती है। तो महारथी भी बाबा को लिखते हैं, बाबा माया जोर से थप्पड़ लगाती है, हमको देह अभिमान आ जाता है। ये नहीं समझते हैं कि जब हम देही बनेंगे तभी योग बल से विश्व के मालिक बन सकेंगे। गायन भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वो तो बहुत काल को लाखों वर्ष कह देते हैं, क्योंकि वो सब अज्ञान अंधेरे में है। अज्ञानी को अंधा और ज्ञानी को सज्जा कहा जाता है। जो अज्ञानी होते हैं वो चारों तरफ फेरे लगाते रहते हैं। उनकी बुद्धि एक जगह टिकती नहीं है। उनको कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि रचयिता कौन है और रचना कौन है। रचयिता और रचना को जैसे जानते ही नहीं। तो देखो ये भी खेल है। ऋषि मुनि आदि भी नेत नेत करते गए। बाप कहते हैं वो तो है ही हठ योगी और तुम तो राज ऋषि हो। अभी बजन में किसका तरफ भागी बारी हो जाएगा? तुम्हारा राजयोग की तरफ जरूर अंत में भारी हो जाएगा। उस समय उनका वो हठ योग हल्का हो जाएगा। क्योंकि उनका हठ योग है पोला पोला। और तुम्हारा राजयोग है ठोस। उस हठ योग में आमदनी अर्थात प्राप्ति की ताकत कुछ भी नहीं है। 24/11/68 की वाणी का तीसरा पेज। तुमको तो इस राजयोग से बहुत आमदनी होती है। इस राजयोग से तुम कितने साल्वेंट बन जाते हो। और वो तो पोले ही पोले होते रहते हैं। है तो उनका भी योग, परंतु बाप ने समझाया है वो है हठयोगी। उनके हठयोग से कोई प्राप्ति नहीं। तुम तो राजयोग से कितने धनवान विश्व के मालिक बन जाते हो। तो तुम्हारी तरह पूरा भारी हो जाएगा। भक्ति क्या होती है वो भी जानना चाहिए। कहते भी हैं भक्ति का फल देने वाला भगवान है। भक्ति में निष्फल होते हैं इसलिए बाप आकर के भक्ति का फल देते हैं। फिर आस्ते आस्ते वो जमा किया हुआ हिसाब खलास हो जाता है। फिर बाप फल दे करके भर्तु कर देते हैं। तुमको बाप विश्व की बादशाह ही देते हैं ना। तुम जानते हो हम पाठशाला में बैठे हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए, सो भी नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। आगे तो तुम भी पोले पोले थे, गुरु भी पोला बनाने वाला था। वास्तव में उन गुरुओं को शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। अभी वो सभी खाली हैं। तुम बच्चों का बुद्ध रूपी हाथ भर्तु हो जाता है। फिर द्वापर युग से घाटा शुरू होता है। उस समय वो देहधारी धर्म गुरु, वो धर्म पिताएं फिर आना शुरू होते हैं। तो तुम खाली होते जाते हो। फिर बाप आकर के जमा करने का रास्ता बताते। भारत पहले कितना धनवान था। जो पहले पूज्य थे वो अभी पुजारी बन गए। पैसे सारे ही खत्म करते गए भक्ति आदि करने में। तमो प्रधान बनते गए। तमो प्रधान बनने से घाटा भी बहुत पड़ता है। इस समय तो जैसे सब इंसॉल्वेंट बन गए। वाम मार्ग में जाने से फिर लायक आती ही नहीं रहती। अर्थ के आदि होने से जो स्वर्ग में सोने के महल आदि थे वो सब नीचे चले जाते हैं। नीचे जाकर के फिर जब बाप आते हैं तो समय आने पर स्वर्ग आकर खड़ा हो जाता है। जैसे नार होती है भरता है फिर खाली होता है फिर भरता है, तो इसको भी सृष्टि का चक्र कहा जाता है। तुम एकदम भर्तु हो जाते हो। फिर कम होते होते दिवाला मार देते, तुम्हारे सारे ज्ञान रतन खाली हो जाते। फिर बाप आकर की युक्ति बताते हैं भर्तू होने की, इस बाप ने तुमको इतना धनवान बनाया, उनकी तुम कितनी ग्लानी करने लग पड़ते हो, क्योंकि रावण राज्य होता जाता है ना, तो तुम्हारे ऊपर भी असर हो जाता है, इसलिए रावण का भी चित्र बनाई दिया है, राम का भी चित्र बनाई दिया है, रावण को अनेक सिर देते हैं और राम को एक सिर देते हैं। विविचारी बुद्धि और अब विविचारी बुद्धि की बात है, तो रावण के राज्य में हो जाती है गधाई। बाबा ने देखा हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर ये गधाई क्या करेंगे। अलफ को मिला अल्लाह, बेबादशाही सारी भागीदार को दे दी, गधाई को लात मार दी। बाप भी आते हैं मूतपलीती कपड़ धोने, कितना गुलगुल बनाए देते हैं। फिर बच्चे लिखते हैं बाबा हम तो देही अभिमानी बन नहीं सकेंगे, नहीं बन सकेंगे तो बाबा कहेंगे अरे तुम तो गधे के गधे ही रह गए। रावण के सिर पर गधे का शीश दिखाते हैं ना, जैसे कि देह अभिमान छोड़ ही नहीं सकते। अब तुमने तो गधाई को लात मार दी, जो गधे के गधे रह जाते हैं वो क्या सर्विस करेंगे, सर्विस करेंगे या डिससर्विस करेंगे, है डिससर्विस ही करेंगे। देही अभिमानी बन नहीं सकेंगे, योग बल का जौहर चाहिए ना, नहीं तो फिर कोई को तीर लग नहीं सकेगा। बाबा पंडित का मिसाल देते हैं, पंडित ने बोला राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, तो बुढ़िया तो पार हो गई, पंडित जी रह गए। बाप भी समझाते हैं, बाप में निश्चय रख करके बाप को याद करेंगे तो तुम जरूर पार हो जाएंगे, वो भी निश्चय से नदी पार हो गई ना, पंडित तो नहीं जा सका। तो यहां भी तुम बाप को याद करने से पार हो जाएंगे, नहीं तो जिनमें देह अभिमान होगा वो क्या सर्विस कर सकेंगे, खुद ही श्रीमत पर नहीं चलते हैं, टीचर के मत पर स्टूडेंट न चले तो उनका क्या हाल हो जाएगा। माया भी बड़ी प्रबल है, देह अभिमान बड़ी जोर से आ जाता है, फिर पद कम हो जाता है, तो कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा समझाता हूं। याद की यात्रा नहीं है तो जरूर मोचरा खाते रहेंगे, बल औरों को रास्ता बता देवे परंतु खुद मोचरा खावेंगे। परंतु देह अभिमानी ऐसे हैं जो मोचरे का भी उनको डर नहीं रहता है, कितना पद भ्रष्ट हो जाता है, उनको इस बात का पता ही नहीं पड़ता है कि हमारा पद नीचा हो गया, जो अपन को ब्राह्मण समझते हैं माया उनसे लड़ती भी है, याद में न रहने से माया से हराते हैं, देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पाप तो जरूर रह जाएंगे। बाबा किसको समझाने दे कि तुम सर्विस नहीं करते हो और ही दूसरों का नुकसान करते हो, तो ऐसी समझानी बाबा की सुनकर के भी कोई कोई ऐसे मगरूर होते हैं जो कहते हैं ये हम सारी की हुई सर्विस को उड़ाई देंगे। बाबा को भी अल्टीमेटम दे देते हैं, हम यह कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, उनको अंदर में बहुत गुस्सा आने लग पड़ता है, फिर उनकी डिसर्विस से नतीजा क्या होता है, जो माताएं अबलाएं हैं उन पर भारी मुसीबत आ जाती है। ऐसे ऐसे डिसर्विस करने वाले निकल पड़ते हैं, इसलिए बाप रोज समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, मन मना भव, अपन को आत्मा नहीं समझते हैं, क्योंकि देवान पक्का हो जाता है। माया कितनी प्रबल है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी आत्मा अभिमानी नहीं बनने देती है, अच्छे अच्छे मुरली चलाने वाले बच्चे जाकर के मूतपलीती बन पड़ते, उनको अहंकार भी बहुत होता है। बहुत हैं जो यज्ञ से निकलते हैं फिर डिससर्विस करने लग पड़ते, माया उन पर जीत पहन लेती है, आगे चल करके माया और ही जबरदस्त बनेगी और ही नीचे गिराती रहेगी, सबका अहंकार तोड़ती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।